नमस्कार श्रोताओं, मैं सुजीत एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच फरीदाबाद मजदूर समाचार के साथ। आज हम बात करेंगे आपसे सरकार द्वारा समय समय पर लागू किए गए भू अधिग्रहण कानूनों के प्रभावों की, चाहे नगर महानगर की स्थापना की बात हो, चाहे सड़क, रेल, बंदरगाह या हवाई अड्डों का निर्माण, चाहे नदियों पर बांध बने या फिर उनसे नहरें निकले, चाहे कारखाने बने या खदाने या फिर तेल और गैस के कुएं, चाहे चाय, कॉफी, रबर के बागान हो या फिर खेती, फलों के बाग, भेड़, गाय, सुअर, मुर्गी पालन के लिए हजारों एकड़ में फैले फॉर्म या फिर सेना की छावनियों और प्रशिक्षण तथा युद्धाभ्यास के लिए स्थान हो, इन सब में एक बात समान है और वो है भू स्वामियों को उनकी जमीनों से वंचित कर देना। तरीका चाहे जो भी हो, ये सारी कोशिशें एक तरह से अर्थव्यवस्था के विस्तार और उसकी मजबूती की अनिवार्य आवश्यकताओं की आधारभूत अंग हैं। कोई भी अर्थव्यवस्था कानून के संरक्षण में ही अपना विकास कर पाती है, इसलिए पिछले 300 वर्षों के दौरान भू स्वामियों से उनकी जमीनें छीनने के लिए दुनिया भर में इन्हीं भू अधिग्रहण कानूनों की आड़ में कई अभियान चले और इन कानूनों के खिलाफ पिरुए विरोध को सत्ता की ताकत से कुचल दिया गया। एक तरफ प्रगति और विकास के नाम पर जमीनों के अधिग्रहण को सही ठहराने की कोशिश की गई, लेकिन दूसरी तरफ इस अधिग्रहण से उपजी विस्थापन की समस्या को नजरअंदाज कर दिया गया। भारतीय उपमहाद्वीप में 1757 से 1947 के बीच इन्हीं भू अधिग्रहण कानूनों का सहारा लेकर भू स्वामियों से बहुत सारी जमीनों का अधिग्रहण कर लिया गया। 1907 में सरकार ने जमशेद टाटा को कई गांवों की जमीन दे दी, लेकिन यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि उन 200 वर्षों की तुलना में इन 75 वर्षों में बहुत अधिक जमीनों का अधिग्रहण सरकार ने विकास के नाम पर कर लिया है, जो भौतिकतावादी अर्थव्यवस्था के तीव्र विस्तार और उसके बढ़ते प्रभाव का ही परिणाम है। इन कानूनों की आड़ में वन भूमि का सरकारीकरण एक तरह से उसके असली स्वामी वनवासियों को उनकी जड़ों और संस्कृति से अलग कर देना नहीं तो और क्या था। इस व्यापक सांविधानिक बेदखली का पता तो लोगों को तब चला जब घुमक्कड़ पशुपालकों और वनवासियों पर वन विभाग तथा पुलिस के शोषण का चाबुक एक साथ चलने लगा। इसके तुरंत बाद लागू हुए पंचायती राज कानून की आड़ में शामलात, बड़ी, चारागाह, जोहर, तालाब, पोखर और सामूहिक करोड़ों एकड़ भूमि सरकार ने ग्रामवासियों से ले ली और इसकी नीलामी को अपनी आय का जरिया बनाया। यही नहीं, यह व्यवस्था कहीं न कहीं गांव के भाईचारे को भी दूषित करने लगी। नई दिल्ली बसाने के लिए 1910 में कई गांवों की जमीनें छीनी गई थी। उन्हीं में से एक गांव मालचा की जमीन पर खड़ा है आज का राष्ट्रपति भवन। उसके निवासियों के विरोध को शांत करने के लिए आज भी उन्हें अपने पुरखों को याद करने के लिए एक वर्ष में एक बार राष्ट्रपति भवन का एक छोटा सा गेट खोला जाता है। इसी तरह फरीदाबाद बल्लभगढ़ कॉम्प्लेक्स 28 गांवों की जमीन पर बना था। रोज हो रहे नगर निगमों की स्थापना या उनके विस्तार भी लगातार गांवों की जमीनें निगल रहा है। बीते वर्षों में अपनी जमीनों से वंचित हो रहे ग्रामीणों ने कई विरोध प्रदर्शन किए और इसे दबाने के लिए सत्ता, पुलिस और सेना का प्रयोग करती रही। ये भू अधिग्रहण कानून किसानों, दस्तकारों को बेहाल कर चुके हैं। गरीब चाहे शहरी हो या ग्रामीण, उसके लिए कहीं कोई जगह नहीं है। गांव से शहर, शहर से गांव, लगता है जैसे इनकी यही नियति बन गई है। पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सेना में सिपाही, फैक्ट्रियों में मजदूर, हर जगह इन्हीं गरीबों के बच्चे हैं, क्योंकि इनकी अपनी मजबूरियां हैं। लेकिन ग्रामीण हो चाहे शहरी, दुनिया भर के गरीब अब और सहन नहीं करना चाहते और उनका इनकार आक्रोश से भरा हुआ है। इस कारण संपूर्ण विश्व में उथल पुथल मची हुई है। इस उग्र और आक्रोशित इनकार को कुचलने के लिए सरकारें एकजुट होकर ताकत का प्रयोग कर रही हैं, लेकिन गरीबों के ये विद्रोह नए समाज के निर्माण में अपना रचनात्मक एवं सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। यह समय गरीब मजदूरों से अपने संबंधों की डोर को और मजबूत करने का और विभिन्न कानूनों की आड़ में इनका शोषण करने वाली सत्ता के खिलाफ खड़े होने का है। तो आइए इस भौतिकतावादी अर्थव्यवस्था में निहित शोषण के कारक तत्वों के खिलाफ आवाज उठाएं और सत्ता को इसमें बदलाव के लिए जगाएं। तो श्रोताओं, कैसी लगी आज की जानकारी? आप अपना अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें अपने मोबाइल में नंबर 3 दबाकर। धन्यवाद।